ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के 3 जिलों में शनिवार तक विरोध प्रदर्शन और 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज राजधानी के कई क्षेत्रों में सड़कों का निरीक्षण किया। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से हमारी यमुना वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाई और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने लोगों से कल सुबह 9 से 10 बजे तक स्वच्छता के लिए श्रमदान करने का आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 3 जिलों में शनिवार तक विरोध प्रदर्शनों और 5 या अधिक अनाधिकृत लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये निर्णय मध्य दिल्ली, नई दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा कल से लागू हो गई है और इस महीने की 5 तारीख तक जारी रहेगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कई वर्तमान मुद्दों को लेकर दिल्ली का माहौल संवेदनशील है। आदेश में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं से लगे लोगों और वाहनों की आवाजाही पर लगातार नजर रखना जरूरी है। इसके अलावा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर गणमान्य लोगों की उपस्थिति को देखते हुए भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी के कनॉट प्लेस में आयोजित की जाने वाली हरित कलश यात्रा को दिल्ली पुलिस ने आज शहर में लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत रद्द कर दिया है। इस कलश यात्रा का उद्देश्य शहर के लोगों को प्रदूषण और इसके नियंत्रण के बारे में जागरूक करना था। आयोजन की तैयारियां पूरी कर लिए जाने के बावजूद कलश यात्रा को रद्द किए जाने पर दिल्ली सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ सरकार के इस जन जागरूकता अभियान को पुलिस द्वारा रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री राय ने कहा कि सरकार ने प्रदूषण के विरुद्ध शहर में अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत ही कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा था, जिसकी अनुमति पुलिस से पहले ही मिल चुकी थी। श्री राय ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से आग्रह किया कि शहर में प्रदूषण जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वे दिल्ली पुलिस को अनुमति देने के लिए निर्देश दें। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। फरीदाबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को पूरी निष्पक्षता, भयमुक्त, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी हर गतिविधि के लिए कई दस्ते बनाए गए हैं, जो पूरी सतर्कता से काम कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि घर से मतदान करने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। इस दौरान 85 वर्ष से अधिक आयु के 230 मतदाताओं ने मत डाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के पलवल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने जाति की राजनीति को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया। उधर सोनीपत के गोहाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी का केंद्र बना दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सहित दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों ने आज राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर सड़कों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री आतिशी ने रिंग रोड पर सराय काले खां, निजामुद्दीन, नेहरू विहार फ्लाईओवर, मूलचंद अंडरपास और अगस्त क्रांति मार्ग का निरीक्षण किया। वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ पूर्वी दिल्ली के अलकनंदा और सीआर पार्क की सड़कों का जायजा लिया। दौरे के बाद मुख्यमंत्री आदेश ने बताया कि उनकी सरकार ने शहर को गड्ढा मुक्त बनाने की मुहिम शुरू की है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों द्वारा राजधानी की सड़कों का निरीक्षण शुरू करने पर भाजपा ने आरोप लगाया है कि सरकार ने बीते 10 वर्ष में कुछ नहीं किया और अब चुनाव से पहले सड़कों का दौरा कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार की लापरवाही से शहर की सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं और सीवर के साथ ही पेयजल की लाइनें जगह जगह से टूटी पड़ी हैं। श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी पिछले लगभग एक वर्ष से लोक निर्माण और जल बोर्ड विभाग की मंत्री हैं, लेकिन वे शहर की सड़कों और पेयजल लाइनों को दुरुस्त कराने के बजाय सड़कों का निरीक्षण कर सुर्खियां बटोर रही हैं। भारत और जमैका ने आज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्कृति और खेलों के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की यात्रा पर आए जमैका के प्रधानमंत्री डॉ एंड्रयू हॉलनेस के बीच नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद इन समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। एक रिपोर्ट।
द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों के बीच अनेक समझौता ज्ञापनों और समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। डॉक्टर हॉलनेस की यह पहली भारत यात्रा है। जमैका के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है। चार दिन की यात्रा के दौरान वह व्यापार और उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में जमैका के किट्सन कस्बे में ग्रामीण विकास परियोजना के लिए $10 लाख की सहायता की घोषणा की थी। यह पहल जमैका के सतत विकास के प्रति भारत की वचनबद्धता को प्रदर्शित करती है। भारतीय कंपनियों की जमैका में विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और BPO सेक्टरों में पहुंच बढ़ी है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी।
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कुटुंब ऐप का उद्घाटन किया। इस ऐप का उद्देश्य दिल्ली के पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना है। इस ऐप को दिल्ली पुलिस के सभी जिलों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि एक अभियान के तहत 65,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को इस ऐप पर पंजीकृत किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से वायु वीर विजेता कार रैली को रवाना किया। इस कार रैली को भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर 8 अक्टूबर को लद्दाख के थायस बेस से अरुणाचल प्रदेश के त्वांग के लिए औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये रैली 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए कुल 7,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करेगी। भारतीय सेना सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज CLAWS के सहयोग से अपने प्रमुख कार्यक्रम चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन करेगी। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम 24 से 25 अक्टूबर तक नई दिल्ली में राष्ट्र निर्माण में वाहक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को गति देने की थीम पर आयोजित किया जाएगा। आज नई दिल्ली में आयोजित कर्टन रेजर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 2047 में एक सुरक्षित और समृद्ध भारत के भारतीय सेना के दृष्टिकोण पर विचार किया। भारतीय रेलवे भंडार सेवा के 1987 बैच के अधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने आज उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले श्री वर्मा केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन प्रयागराज के महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से हमारी यमुना वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि एक सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित इस वॉकाथॉन में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया।
हमारी यमुना वॉकाथॉन में 500 से अधिक एनसीसी कैडेट अधिकारियों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य लोगों को यमुना नदी के प्रति उनकी सामूहिक जिम्मेदारी को याद दिलाना और नदी को साफ रखने के लिए जागरूक करना था। इस अवसर पर श्री सैगल ने कहा कि समाज की जिम्मेदारी है कि पूर्वजों ने जो स्वच्छ नदियां प्रदान की थी, उसी स्थिति में आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ नदियां प्राप्त हों। वॉकाथॉन में शामिल एनसीसी कैडेट सुमित ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि रैली में शामिल लोग यमुना नदी को स्वच्छ करने के लिए प्रयासरत हैं।
आज हमने रैली निकाली है यमुना साफ करने के रिगार्डिंग, ये जागरूक कर रहे हैं लोगों को। यमुना साफ होगी तो दिल्ली में पानी भी स्वच्छ आएगा।
एनसीसी कैडेट उमरा ने बताया कि वर्तमान में वातावरण दूषित है और इसके लिए सभी को आगे आना होगा।
आज हमने सीपी पर एक स्केट परफॉर्म करी थी, यह दर्शाया था कि कैसे देश में लोग यमुना को गंदा कर, और हमें उसको नहीं करना चाहिए जिससे वातावरण काफी दूषित हो रहा है, और हमें एक ही कदम लेकर के अपनी यमुना को बचाना चाहिए।
स्वच्छ यमुना जागरूकता अभियान में वॉकाथॉन के अलावा नुक्कड़ नाटक और अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अभिषेक कपिल, आकाशवाणी, दिल्ली।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में सुशासन और अभिलेख नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में उन अभिलेखों को प्रदर्शित किया गया जो वर्षों से विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों द्वारा संरक्षित और सुरक्षित किए गए हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री शेखावत ने अभिलेखों को भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित करके यादों को संस्थागत बनाने के सरकार के प्रयासों की सराहना की। 4 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन इस सप्ताह शुक्रवार को होगा। आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पॉलीवाल ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी मुख्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण किया। इस अवसर पर अपर महानिदेशक एल मधुनाग और निदेशक सुश्री महापात्रा ने भी पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने पौधों के रखरखाव का संकल्प लिया और अन्य अधिकारियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में विकलांगता पुनर्वास और विशेष शिक्षा में राष्ट्रीय टॉपर्स को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस संवेदनशील क्षेत्र को चुनने के लिए छात्रों की सराहना की। श्री कुमार ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए दिव्यांगजनों की भागीदारी पर भी जोर दिया। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था दिवस के मौके पर वजीरपुर में स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले स्मारक वृद्ध आश्रम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने लोगों से कल सुबह 9 बजे से स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस 2024 पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पाटिल ने स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से मिशन ने देश भर में स्वच्छता को खुले में शौच मुक्त करने के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंध के विस्तार में व्यापक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि देश भर में 24 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 में अब तक 20 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया है। इस वर्ष देश भर में 38 लाख से अधिक सफाई मित्र इस अभियान में शामिल हुए हैं। श्री पाटिल ने कहा कि इस अभियान में देश भर की राज्य सरकारों, स्थानीय अधिकारियों और सामुदायिक समूहों की सक्रिय भागीदारी देखी गई है। 2 अक्टूबर 2024 को 155वीं गांधी जयंती पर स्वच्छता ही सेवा अभियान का समापन होगा, जो 17 सितंबर से शुरू किया गया था। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम साफ रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के 3 जिलों में शनिवार तक विरोध प्रदर्शनों और 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज राजधानी के कई क्षेत्रों में सड़कों का निरीक्षण किया। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से हमारी यमुना वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाई और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने लोगों से कल सुबह 9 से 10 बजे तक स्वच्छता के लिए श्रमदान करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।